सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उलहक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
वेलकम टू सोच विचार।
ये
हमारे मुल्क में बहुत सारी गहमा गहमी हो रही है सी पैक पे, पर सी पैक जो है वो एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है, उसका नाम है ग्वादर। ग्वादर एक क्राउन ज्यूल है सी पैक का, सब कुछ ग्वादर पे डिपेंड करता है कि ग्वादर ठीक चलता है कि नहीं चलता। तो हमारे दोस्त हैं जिनको आपने पहले भी सुना है इस सोच विचार पे, नवीद इफ्तखार साहब, वेल नोन कॉलमनिस्ट, वेल नोन इकॉनमिस्ट, पाकिस्तान के हैं, माशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी काम कर चुके हैं और बड़े बड़े अच्छे टॉपिक्स पर अखबारों में लिखते हैं, तो काफ़ी वेल नोन आदमी हो गए। तो मैं इनका मज़ीद तारुफ नहीं कराता। नवीद साहब, वेलकम टू सोच विचार।
जी थैंक यू डॉक्टर साहब।
बताइए कि आप अभी ग्वादर का चक्कर भी लगा के आए हैं, आपने ग्वादर पे एक पेपर भी लिखा है और माशाल्लाह आप काफ़ी आप तकरीरें भी ग्वादर पे कर रहे हैं, ज़रा बताइए ग्वादर जो है ये चल रहा है प्रोजेक्ट, मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 15 साल से, 15 साल पहले मुशर्रफ कादरी ने इसको शुरू किया था और बहुत सारे लोगों ने जाके ज़मीनें भी ले ली थी और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी गई थी वहाँ, फिर उसके बाद ये बैठ के अब इसको दोबारा सी पैक में चीन ने शुरू कर दिया। तो ज़रा हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दें, ग्वादर क्या है, इसकी अहमियत क्या है और क्यों हम इस पर इतना ज़्यादा इनसार कर रहे हैं।
जैसे जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में जो है वो स्टार्ट में मेंशन किया है कि ये ग्वादर जो है सीपैक में इसकी बहुत अहमियत है, और आपने साथ ही कहा कि एक दफ़ा ये स्टार्ट हुआ लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ना हो सकी, उसकी वजह ये थी कि ये मुशर्रफ दौर में पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी के साथ जो है ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने एक एग्रीमेंट किया था और उन्होंने बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मोड में ये पोर्ट डेवलप करनी थी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा काम ना हो सका उस एग्रीमेंट के तहत, और वो सबसे बड़ी वजह रही कि वो जो एक हाइप क्रिएट हुई ग्वादर की वो आगे ना बढ़ सकी, और इसी में कुछ उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, कुछ पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी ने जो इन्वेस्टमेंट्स करनी थी वो उन्होंने ना की, जो रोड्स बिल्ट होने थे कनेक्टिविटी हिंटरलैंड से वो ना हो सकी, तो उसके बाद फिर ये जो है एक म्यूचुअल कॉन्सेंट से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसका एजेंट जो है वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है और पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी, और इन पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी ने एक्चुअली ये पोर्ट जो है वो अपने राइट्स हैंड ओवर कर दिए चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी को जो है, और वो तब से अब दोबारा इस पर प्रोग्रेस स्टार्ट हुई और ये ग्वादर जो है वो सी पैक में इसकी काफ़ी अहमियत हासिल हो चुकी है। जैसा कि हम एक ग्वादर में मैं गया हुआ था तो एक ग्वादर में एक ऑफिशियल था और उसने कहा कि देर इज़ नो सी पैक विदाउट ग्वादर, कि अगर ग्वादर ना होता तो सी पैक ना होता, तो ये एक अहम जो है वो उसने पॉइंट हाईलाइट किया।
मुझे बताइए क्या ग्वादर की अहमियत सिर्फ सी पैक है, उसके अलावा कोई अहमियत नहीं है?
ये तो सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे जिक्र किया, अदरवाइज तो जो 1950s में कहते हैं कि जो US की मदद से एक सर्वे किया गया था जिसमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो ग्वादर है एक पोटेंशियल डीप सी पोर्ट है, तो पाकिस्तान के लिए तो इसकी अहमियत जो है वो एक डीप सी पोर्ट की अहमियत है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो है महदूद वसाइल के पेश नज़र मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान खुद से इस पोर्ट को डेवलप कर पाता, और अहमियत तो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली इसकी है, लेकिन इसकी अहमियत बढ़ गई है जब से ये सी पैक के साथ मुंसलिक हो गया।
नहीं तो ये मुझे बताइए कि ये अगर 2003 से प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये हम क्यों नहीं चला सके?
ये जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि ये हमने तो जो है वो एग्रीमेंट किया पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी से और पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी ने वो इन्वेस्टमेंट्स करनी थी बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मोड में, तो पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी ने वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, वो पोर्ट पे काम आगे नहीं बढ़ा और वो रुक गया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मतलब एक वजह उसकी ये है कि उस वो जो एग्रीमेंट था वो बाद में कोर्ट्स में भी चैलेंज हो गया और लिटिगेशन के इश्यूज आ गए कुछ उसी एग्रीमेंट के अंदर, और इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोड कनेक्टिविटी इंश्योर करनी थी ग्वादर के साथ वो भी नहीं कर पाए, तो अब जब से ये काम स्टार्ट हुआ है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी जो है COPHCL, जब से इसने स्टार्ट किया है मेरे ख्याल है पोर्ट के ऊपर बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है।
अच्छा तो बताइए आपकी रिसर्च क्या शो कर रही है?
मेरी डॉक्टर साहब मेरी जो रिसर्च है वो एक्चुअली ग्वादर सिटी के ऊपर है। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि हम सी पैक पे बहुत बात करते हैं और सी पैक में ग्वादर की भी अहमियत है और हम कभी कभार ग्वादर पोर्ट का भी जिक्र कर लेते हैं, لیکن گوادر سٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں, اپنے اپنے میڈیا کے اندر بھی, اپنے اکیڈیمکس بھی جو ہیں اس پہ بات نہیں کر رہے. دیٹ واز دا بیسک موٹیویشن کہ میں نے کہا یہ دیکھوں کہ گوادر سٹی میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور وہ موٹیویشن اس لیے ہے کہ جو پورٹ سٹیز کا لٹریچر جب ہم نے دیکھا تو پتا چلا کہ پورٹ اور سٹی جو ہوتے ہیں دے بوتھ ری انفورس ایچ ادر, دونوں کی کامیابی اور دونوں میں سے کسی ایک کی ناکامی ایک دوسرے پہ اہم اثرات مرتب کرتی ہے. اور اس کے پیش نظر جو ہم میری جو بیسک انفارمیشن تھی کہ ہم پورٹ کے اوپر تو ہم نے چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کو جو ہے وہ ایگریمنٹ دے دیا, لیکن سٹی جو ہے وہ پاکستان نے خود ڈیولپ کرنا ہے, اور وہ ایسا سٹی ہونا چاہیے جو جو اس پورٹ آپریشنز کو سپورٹ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سٹی کو کہنے جا رہے ہیں جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, جیسے مختلف اسٹیٹمنٹس میں نے گیدر کی, وہ کہہ رہے تھے کہ دس از گوئنگ ٹو بیکم نیکسٹ شینزن, دس از گوئنگ ٹو بیکم نیکسٹ ہانگ کانگ, دبئی. تو کیا اگر شینزن, ہانگ کانگ, دبئی ایسے شہر بنانے ہوں تو ہم اس کے مطابق اقدامات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے دو چیزوں کو دیکھا, ایک سٹی کی گورننس کو اور دوسرا سٹی کے اربن ڈیزائن کو. سو میری اسٹڈی جو ہے وہ فوکس تھی آن سٹیز گورننس اینڈ اربن ڈیزائن.
اچھا تو بتائیے کیا مطلب بیسکلی, ایک سیکنڈ, آپ کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں جو خامیاں ہیں وہ یا پرابلمس ہیں دبئی میں دو قسم کے ہیں, میں دبئی کو سوری گوادر کو پہلے پورا سمجھ لوں نا. گوادر میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے یہ ایک تو پورٹ نہیں بنایا, دوسرا شہر نہیں بنایا, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دونوں چیزیں نہیں بنی ابھی تک,
پورٹ کے اوپر سٹارٹ ہو گیا, شہر پہ بھی کام بہت سلو ہے. نہیں تو شہر میں
ذرا تھوڑا سا رک جائے کہ ہم نے جو شہر بنایا تھا وہ ہم نے شہر تو بنانا شروع کر دیا تھا 2003 میں, مجھے یاد ہے 2005-06 میں بڑی اس پہ باتیں ہوئیں اور بڑے لوگوں نے پیسے لگائے گوادر میں, لوگوں نے زمینیں دھڑ دھڑ خریدی اور بہت خریدی. ٹھیک ہے, کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیا ہوا تھا یہ؟
جی بالکل یہی ہوا ہے, لوگوں نے بہت زیادہ زمین خریدی, ارلی 2000 سے جو ہے وہ زمین لوگ خریدنا سٹارٹ ہو گئے. اور پاکستان میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک جو دا موسٹ لیکریٹو انویسٹمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے, تو گوادر کو بھی ایک ریئل اسٹیٹ ہائپ کریٹ کی گئی, لوگوں نے وہاں پیسہ لگایا اور وہاں زمینیں خرید لی ہوئی ہیں. اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوا اکثر وہاں.
اچھا وہ کیوں نہیں ہوا بتائیے.
اچھا اس میں دو تین وجوہات ہیں. سب سے پہلی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پورٹ پہ کام آگے بڑھتا.
میرا جو لائن آف کوئسچننگ ہے نا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے آ کے ڈیولپ کرے گا تو ڈیولپ کرے گی, ہم میں کوئی صلاحیت نہیں, کہ ہم اتنے نااہل اور جاہل لوگ ہیں کہ ہم کچھ بھی ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو پھر ماشاء اللہ ہم چھوڑ دیں نا آزادی کے غم, اور چھوڑ دیں کہ ہم بڑے خود مختار لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے یہ ہیں, ترانے تو ہم بہت اچھے گاتے ہیں, کام ہم کوئی نہیں کر سکتے. کیا یہ بات صحیح ہے؟
ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اس پہ ڈس ایگری کروں گا. جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات ہے, پوری دنیا میں پورٹ انفراسٹرکچر جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں, وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ آپ چائنا یا کسی اور کمپنی کو کہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کرے اور بلٹ آپریٹ ٹرانسفر موڈ کے اوپر آپ کی پورٹ ڈیولپ کر دے. وہاں تک تو بات,
دبئی ایک چوہا جتنا ملک ہے, دبئی کی جو آبادی ہے میرا خیال اسلام آباد سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے, شاید F8 اور F9 کے برابر ہے. ٹھیک, دبئی نے اگر پورٹ ڈیولپ کر لیا, مانا انٹرنیشنل کانٹریکٹرز وغیرہ وہ آپ کہیں سے بھی لے لیتے ہیں کہ سیل فون میں بھی استعمال کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں, کمپیوٹر میں بھی استعمال کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں, تو وہ تو ایک کمپیوٹر کی طرح آپ نے ایک بندے کو یا کسی کمپنی کو بلا کے ڈیولپ کروا لیا. ٹھیک ہے, پر 15 سال سے مجھے بتائیے کہ تماشا کیا ہے کہ 15 سال سے ہم نے پیسے لگا دیے. میرا خیال دبئی پہ ہم نے تقریباً کوئی 2-3 بلین ڈالرز لگا دیے تھے, اور 15 سال سے ہمیں کوئی ریٹرن نہیں, ہم چین کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ سری لنکا نے پورٹ ڈیولپ کر لیا, اب چائنا کے تھرو سب کچھ ہو گیا, تو ہم کیوں نہیں کر سکے بتائیے.
میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو چائنا والا ہے, جب سے وہ سٹارٹ ہوا ہے تو اس پہ تو کام آگے بڑھ رہا ہے. جو نہیں ہوا وہ اس دوران نہیں ہوا, 2003 سے لے کے 2010-11 کا جو ٹائم ہے اس پہ پورٹ پہ کام نہیں ہوا, اور وہ ہماری ویکنس تھی کہ ہم نے اپنا وہ جو ایگریمنٹ تھا پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی کے ساتھ, یا ہم نے اس کی صحیح طرح سے چھان بھی نہیں کی اس کو ایگریمنٹ دیتے ہوئے کہ کیا اس کمپنی کی کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے. سو یہ کوسچن ضرور ہے, और लेकिन जब से ये चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग के पे गया है, ये पोर्ट पे काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो शहर है, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि शहर तो हमने खुद डेवलप करना है, शहर जो है वो चाइना ने नहीं डेवलप करना, वो पाकिस्तान ने डेवलप करना है। तो मेरी इंटरेस्ट भी इसीलिए इसमें थी कि पोर्ट में तो काम आगे बढ़ रहा है लेकिन सिटी के ऊपर काम की प्रोग्रेस बहुत स्लो है हर लिहाज से, कि हम कह रहे हैं वो एक इंडस्ट्रियल सेंटर बनने जा रहा है, वो एक इकोनॉमिक सेंटर बनने जा रहा है, वो पोर्ट शेंजन की तरह का एक शहर बनेगा, लेकिन इस वक्त जो शहर के हालात हैं या वहाँ के जो इश्यूज हैं वो ऐसे नहीं हैं कि पोर्ट चाहे चल भी पड़े तो वो शहर को इकोनॉमिक सेंटर बन जाएगा। तो मेरी जो बेसिक मोटिवेशन थी वो ये थी कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूँ कि क्या इस वक्त जो शहर में हमारी गवर्नेंस और अर्बन डिज़ाइन है वो उन गोल्स को सपोर्ट कर रहा है जो गोल्स हमारे पॉलिसी मेकर्स ने ग्वादर के लिए सेट किए हुए हैं। तो दैट इज एक्चुअली द बेसिक आइडिया।
चलिए बताइए क्या आपकी फाइंडिंग है।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया गवर्नेंस से, और जैसा कि हम टिपिकली शहरों में जो है वो हमारे यहाँ गवर्नेंस जो है वो बहुत फ्रेगमेंटेड होती है, और जब मैं गवर्नेंस कहता हूँ उसकी मैं सिंपल ग्वादर से पहले आपको मिसाल दूंगा कि जैसे इस्लामाबाद शहर है, तो इस्लामाबाद शहर में एक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इट वर्क्स अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, शहर है लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है डायरेक्ट। जो है रिसेंट इलेक्शन हुए तो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई और वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा गया कि म्यूनिसिपल सर्विसेज आपने देनी है। इसी तरह जो शहर के अंदर एजुकेशन और हेल्थ का निज़ाम है वो कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन के अंडर दिया गया। तो जब हम अपने शहरों को देखते हैं तो हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इतनी केपेबल भी नहीं है और इतनी एम्पावर्ड नहीं है। तो ये फ्रेगमेंटेशन की वजह से हमारे शहर जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो हमने देखा कि क्या ग्वादर में जो एक आइडिया होता है कि जब आप नया शहर बनाते हैं तो नया शहर जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि आप नए शहर में एक बेहतर सिस्टम इंस्टॉल करें जो कि आप एग्जिस्टिंग सिटीज में आपको उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो इकोनॉमिस्ट पॉल रोमर है उसने भी न्यू इकोनॉमिक सिटीज पे काम किया है और उसका भी आइडिया ये है, ही कॉल्स न्यू इकोनॉमिक सिटी एज अ स्टार्टअप सिटी, कि ये स्टार्टअप सिटीज होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। तो आइडिया ये था कि यहाँ ग्वादर के अंदर हम अगर इतने हमारे मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको शेंजन बनाने के, हांगकांग बनाने के, तो वी वुड हैव थॉट अबाउट गवर्नेंस ऑफ द सिटी। लेकिन जो ऑन ग्राउंड और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने किया उसमें सब भी, तो वहाँ देर आर मैनी इशूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं जिसकी वजह से कोई प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही। वहाँ एक ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के है वो अंडर काम करती है। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी जो है वो ऑलरेडी इज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसने चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के साथ किया हुआ है। और जो फ्री पोर्ट जोन जो है, जो एरिया है, हालांकि ग्वादर का पोर्ट का वो एरिया था जो पोर्ट ने डील करना था, ग्वादर फ्री पोर्ट जोन जो है उसका एग्रीमेंट भी जो लीज है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग को, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने दी हुई है। अच्छा, इसी तरह वहां पर बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है। जो दो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, आप भी गए होंगे, वो जो हैमर हेड के ऊपर सिंगार हाउसिंग सोसाइटी है और न्यू टाउन का एरिया है, ये GDA बनने से पहले जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने सेल कर दी और उनको डायरेक्टली जो है वो डील कर रहा है। लेकिन मास्टर प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मे है। अच्छा, अब ये सारी बातें लगेंगी कि शायद इन सारी बातों का सिटी की परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक है। उसकी मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल दूंगा कि शहर में जब से इतनी देर आप कह रहे हैं 2003 से ये सारे काम हो रहे हैं, ग्वादर में पानी नहीं है पीने के लिए और देर आर सो मेनी एजेंसीज। अगर आप पूछें तो पाकिस्तान का फेडरल प्लानिंग कमीशन इन्वॉल्व है पानी के
मामले में। ग्वादर गया था 2011 में चीफ मिनिस्टर के साथ और काफ़ी हमने ये बातें सब की वहाँ। तो ये बात बताइए कि ग्वादर जो है ये इसकी जो सारी चीज़ है, ग्वादर तो DC के नीचे नहीं आता? DC ग्वादर नहीं है
जी, DC ग्वादर है,
ठीक है,
और वो रेवेन्यू पावर DC के पास है। लेकिन जैसे ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक अथॉरिटी बनाई गई जिसके जिम्मे सिटी की मास्टर प्लानिंग है,
वो तो CDA और
जोनिंग और रेगुलेशन,
हाँ वो तो CDA और LDA की तरह है ना, पर ग्वादर जो चलाता है वो तो DC चलाता है, ठीक है ना, रेवेन्यू पावर उसके पास है, जुडिशियल व्हाटएवर मैजिस्ट्रेसी पावर उसके पास है, ठीक है ना जी। अच्छा, नाउ ये तो एक चीज़ हो गई, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, फ्रैगमेंटेड डेवलप वो गवर्नेंस है और फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस तो हमारी हर सिटी में, ये तो 2005 में जब मैंने कॉन्फ्रेंस कराई थी सिटीज़ पर तो यही मेजर पॉइंट था कि यार कराची में फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कराची में मेरे ख्याल को 7 या 8 जुरिस्डिक्शन हैं
जी 30 ऐसी जो है यार हसन खान साहब जो हैं कराची वाले, उन्होंने जो काम किया हुआ है उन्होंने 27 से 28 ऐसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई की हुई हैं जिनके पास लैंड है, जो लैंड को कंट्रोल करती हैं, और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जो सिटी प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है, वो कैसे मुश्किल बन जाती है इन हालात में कि जब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनके डिफरेंट हायरार्कीज हैं, डिफरेंट टीयर्स ऑफ द
गवर्नमेंट। मतलब ये तो हमारी शहर का यही तरीके का है ना,
इट शुड हैव बीन डिफरेंट।
अब बताइए वो कैसे, व्हाट डू यू वांट, क्या करना चाहिए उसमें?
डॉक्टर साहब मेरी इसमें जो है इसी तरह जैसे मैं आपको सिर्फ दो इसकी एग्जांपल्स देना चाहता हूँ और फिर उसके ऊपर हम आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले पानी की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पानी के ऊपर अगर आप फेडरल गवर्नमेंट से पूछें तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है GDA के जरिए, प्लानिंग कमीशन इन्वॉल्व है, एक बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डीसेलिनेशन प्लांट भी वहाँ पर लगाया जो कि एक लगने के एक महीने बाद ही डिसफंक्शनल हो गया। और इसी तरह वहाँ ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी जो है उसने चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी को कहा कि अभी रिसेंटली उन्होंने वाटर कुछ जो है वो डीसेलिनेशन प्लांट से स्टार्ट किया तो उसको उन्होंने खरीदा है। तो देर आर मैनी प्लेयर्स, लेकिन आज भी वहाँ वाटर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बेसिक अमेनिटी। इसी तरह आप जाएं तो वहाँ बिजली जो है इस वक्त हम ग्वादर की कुछ 70 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है टोटल, और वो हम ईरान से इम्पोर्ट करते हैं, हमारा नेशनल ग्रिड की एक्सेस नहीं है वहाँ पे। अच्छा, बिजली के ऊपर भी आप प्रोजेक्ट्स देखें तो बड़े अरसे से ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल हमारा प्लानिंग का फ्लाज है कि हम हर चीज़ जो है अगर ग्वादर में कोई प्लान होनी है तो वो इस्लामाबाद के प्लानिंग कमीशन के अंदर प्लान होगी, वो कोयटा के प्लानिंग एंड
डेवलपमेंट। जो आप बात कह रहे हैं वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट की एब्सेंस की वजह से सब कुछ इस्लामाबाद में होता है, तो ये भी अगेन एक जनरल प्रॉब्लम है, ग्वादर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। और आपकी बात बिल्कुल सही है, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसका प्रचार तो बड़े लोग बड़ी देर से कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है और होना चाहिए, पर हमारी वो इदारे जौन से हैं, सारे इदारे, पॉलिटिशन हुआ क्या, सिविल सर्विस हुई क्या, कोई भी इदारा है वो इसके बहुत ख़िलाफ़ है। लोकल गवर्नमेंट कोई नहीं चाहता, इवन फौज नहीं चाहती, बिकॉज फ़ौज भी अपनी कंटोनमेंट को बहाल रखना चाहती है, तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट तो हमारे मुल्क में आ नहीं सकती, क्योंकि अगर लाहौर में कंटोनमेंट है, कराची में 3 कंटोनमेंट, लोकल गवर्नमेंट आ भी जाए तो कंटोनमेंट तो बाहर ही रहेगी ना, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। ग्वादर कंटोनमेंट भी है वो तो बाहर रहेगी ना, तो आप बताइए कि फिर इस, ये तो एक मसला है जो कि हम सॉल्व ही नहीं कर सकते बगैर एक जनरल
लेजर। लेकिन डॉक्टर साहब उसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है यहाँ पे कि यहाँ तो नया शहर बनना है, जब नया शहर बनना है तो इसमें बहुत ज्यादा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्न करना है, तो ये ऑर्गेनिकली सिटी नहीं ग्रो हो रहा। तो दुनिया भर में जो नए सिटीज जब प्लान किए जाते हैं तो उनके पीछे स्ट्रॉन्ग जो है वो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट इंस्टॉल की जाती है।
आपको ये मैं इसमें नहीं आपको गुजरने दूंगा आराम से, क्योंकि इस्लामाबाद माशाल्लाह ने नया शहर डेवलप किया और कितना अच्छा डेवलप किया, कितना खूबसूरत शहर है, आप तो वहाँ रहते हैं और मेरे सारे दोस्त जो इस्लामाबाद में रहते हैं माशाल्लाह वो तो बहुत बहुत खुश हैं, वो तो कह रहे हैं इससे अच्छा शहर कोई बना ही नहीं दुनिया में।
तो आप क्या डिसएग्री करते हैं? अगर ये सिर्फ इतना है कि बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन बिजनेस फ्रेंडली नहीं है।
नहीं तो बिजनेस कौन करना चाहता
है? मिस्टेक्स जो हमने इस्लामाबाद के डिजाइन में, गवर्नेंस में की हुई है, मोर और लेस हम वही ग्वादर में भी रिपीट कर।
मैं आपको नेक्स्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट बताऊं आपके लिए, आप नेक्स्ट या किसी भी बच्चा जो करना चाहे एक छोटा सा प्रोजेक्ट करें, मेरे बड़े दिल को लगता है, मेरे पास तो टाइम नहीं रह गया करने के लिए, किसी को करना चाहिए कि इस्लामाबाद का क्या कॉस्ट है हमारे मुल्क पे। मेरा तो ख्याल है हमने एक दो GDPs गवा दिए हैं इस्लामाबाद को डेवलप करने में, और उसका फ़ायदा क्या है? मेरा ख्याल उसका फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि जो वो कहते हैं ना इस्लामाबाद 5 मील बाहर है पाकिस्तान से, वो वाली हिसाब है, तो इस्लामाबाद का तो लॉस ही है। चलें आपकी बात मान ली कि ठीक है हमें एक नई, पर क्या करें, हमारे पास तो फ्रेमवर्क ही नहीं, कैसे बनाएगा बनस बताइए।
जी बिल्कुल, अब ये अहम बात है कि हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है, तो जब हमने डिस्कशन की, हमने वहाँ ग्वादर में भी जाकर सिचुएशन देखी और हमने अपने जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में जो है वो पब्लिक पॉलिसी में डील करते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और इसके अलावा हमने इंटरनेशनल जो है वो रिव्यू किया, और उस रिव्यू से पता चला कि ये जब नए शहर ऐसे बसाए जाते हैं जिनको हम सॉर्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी वहाँ उसको डिक्लेयर करते हैं कि वो इकोनॉमिक सिटीज हैं, प्योरली इकोनॉमिक पर्पजेज के लिए हम बना रहे हैं, तो वहाँ उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो यूजुअली ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम से डिफरेंट रखा जाता है। और जैसे कि शेंजन के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन चाइना ने की कि वो उन्होंने चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराने के लिए शेंजन को चूज़ किया, शेंजन के अंदर जो है वो डिज़ाइन तो उनकी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, लेकिन वहाँ एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट इंस्टॉल की और उस लोकल गवर्नमेंट के हैंडओवर किया। हमारे यहाँ ऐसा कोई फ्रेमवर्क इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन लोगों से बात वो दो है वो इमर्ज हुए, उसके ऊपर अभी प्रोज एंड कॉन्स दोनों के जो है वो आपसे भी बात कर लेते हैं और हम उसको मजीद भी एनालाइज कर रहे हैं। पहला तो ये है कि इसको अगर आपने डेवलप करना है, ग्वादर को वाकई एक अच्छा इकोनॉमिक सिटी बनाना है, तो आपको इसको विद इन द बलूचिस्तान गवर्नमेंट एक सब प्रोविंशियल स्टेटस देना होगा, जिसको एक एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हम कहते हैं, कि अगर उसको वो डेवलप किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन डिवॉल्व की जाए, काफी सारी फेडरल और प्रोविंशियल ऐसी पावर जो हैं वो टैक्सेशन की बॉन्ड इवॉल्व की जाए, सिटी की रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटी हो।
ये जो इकोनॉमिक जोन्स की हमारी लॉ ये कवर नहीं करती,
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहब। ये जो इस इकोनॉमिक्स पे हम आए नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहे थे, तो इस वक्त अगर आप देखें तो ग्वादर के अंदर चार तकरीबन पैरेलल रेजिम्स चल रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। एक जो जैसे आपने जिक्र किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑलरेडी लॉ मौजूद है एक, और वहाँ SEZ बनाने का प्लान है जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर काम कर रहा है रेलिवेंट बलूचिस्तान गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ साथ। एक ये है, इसका टैक्स इंसेंटिव और रेजीम डिफरेंट है। जो पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने फ्री पोर्ट जोन दिया हुआ है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी को, वो एक डिफरेंट टैक्स रेजीम है, उसके अंदर इंसेंटिव्स डिफर करते हैं।
तो अच्छा ये मतलब सॉरी फिर मैं एक जरा क्लैरिफाई कर लूं, आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली वही मैस रहेगा, ठीक है, और उसी के ऊपर हम एक और मैस बना देंगे डिफरेंट टैक्स रेजीम्स, उसी के ऊपर एक और मैस बचा देंगे डिफरेंट लीगल रेजीम्स, ठीक है। तो मतलब
जी तीसरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का एक मौजूद है बाकी, वहां भी मैंने सुना है कि EPZ भी कोई बनेगा, ये भी हो गया तीसरा। चौथा जो है वहां बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से स्टार्ट की हुई है। तो इस वक्त 4 से 5 पैरेलल जो हैं वो ऐसे रजीम्स चल रहे हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कौन सा बेहतर है, और कौन सी ऐसी सिंगल अथॉरिटी है, एजेंसी है, अगर डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट हुई होती सिटी लेवल के ऊपर, लोकल कोई इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अथॉरिटी बनी होती ग्वादर बेस्ड और वो लोगों से डील कर रही होती। अब ऐसा नहीं है, अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी डील करती है, फेडरल गवर्नमेंट भी करती है, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी भी करती है, चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी भी करती है, और नो वन इज क्लियर कि हु इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिसाइड दीज थिंग्स।
तो फिर नवीन साहब इसका तो हल में रखल मुश्किल ही लग रहा है ना, तो चलें ये तो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मैस है, पर ये एक अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम नवीन साहब ये है कि ये हमारे मुल्क का एक निज़ाम है, आपने भी देखा है मैंने भी देखा है कि जनाब अब मेरा शहर ले लें लाहौर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, वहाँ LDA भी है तो कैंटोनमेंट भी है तो DHA भी है तो पता नहीं और कौन कौन इदारे हैं, वो लाहौर इन्वेस्टमेंट वो क्या LIT जो होता है, लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी है, लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी है, इदारों की एक टोटल कन्फ्यूजन है, किसी को कोई नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या करना है, और आप ढूंढते फिरते हैं कि भाई मेरी वो फ़र्द कहाँ से मिलेगी, मेरी फ़लानी चीज़ कहाँ से मिलेगी, विद द रिज़ल्ट कि जो प्रॉपर्टी है वो मूव ही नहीं करती, वो बैठी रहती है। बहुत सारे दोस्त मेरे हैं मैं देखता हूँ उनकी प्रॉपर्टी मूव ही नहीं कर सक रही, या लोग 2-2 साल 3-3 साल लगाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को सिर्फ बेचने में या डेवलप करने में या कुछ करने में। तो ये तो हमारे यहाँ बहुत सख्त, और ये कार्रवाई ग्वादर में भी ले गए, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। अब आ जाए शहर की तरफ, शहर में इन्होंने क्या गलती की?
जी 2-3 हैं डॉक्टर साहब शहर में जो बड़ी अहम है। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस स्पीड से जिस तेजी से काम आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बन पाया, पानी जो है वो वहाँ नहीं टाइमली जो है वो प्रोवाइड कर पाई गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है जैसे मैंने आपको बता रहा था कि ईरान से इम्पोर्ट होती है, अभी पिछले दिन ईरान का अपना कोई क्राइसिस आया तो ईरान ने इलेक्ट्रिसिटी वो जो है वो बंद कर दी और सिटी जो है उसके पास बिजली नहीं थी। पावर प्लांट पे बड़े अरसे से फिजिबिलिटी बनती है, काम स्टार्ट होता है, IPP मोड में बनना था और बड़े अरसे से बन चुका होता लेकिन वो नहीं बन पाया। तो एक तो ये बातें इंपॉर्टेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन और हेल्थ की सिचुएशन, जैसे कि आपको पता है कि ग्वादर वन ऑफ द मोस्ट जो है वो अंडर सर्व्ड एरिया है, ये ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट भी जो है ना स्पार्सली पॉपुलेटेड है, 300,000 टोटल डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है, और उसके अंदर रहते हुए
शहर में कितनी आबादी है इस वक्त?
शहर में कोई 100,000
वहाँ इस वक्त अगर मैं चाहूँ जाऊँ वहाँ और मैं जमीन लेना चाहूँ तो मुझे कितने की मिलेगी?
ये अक्सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। वहाँ जो मुझे जो लोगों ने बताया है कि जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे 15 times जो है वो हायर रेट पे लैंड इस वक्त सेल हो रही है,
यानी कि करोड़ों में
جی بالکل.
اچھا,
اور یہ ایک بہت بڑا میس کریٹ ہو چکا ہوا ہے کہ وہاں پر اس وقت اسپیکولیشن, یہ جو میس اسپیکولیشن سے ہوا ہے اس کی وجہ سے بزنس ایکٹیویٹی جو ہے افورڈیبلٹی بہت مشکل ہو گئی ہوئی ہے, اور لوگوں نے آلریڈی جو ہے وہ تقریباً 40-40, 50-50 کلو میٹر دور شہر سے جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں نے زمینیں خرید لی ہوئی ہیں اس وقت.
نہیں تو یہ ہوا کیوں, وائی ڈڈ دس ہیپن, یہ بتائیے.
میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے وہی, میں جو ایسے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک ہاچ پاچ قسم کی گورننس سسٹم تھا, کون الٹیمیٹلی ریسپانسبل تھا, کس نے ڈیولپ کرنا تھا, بلوچستان گورنمنٹ نے کیا کرنا تھا, فیڈرل نے کیا کرنا تھا, کوئی سنگل اتھارٹی نہیں تھی جو اس ساری سچویشن کو پہلے سے پلان کرتی, اور سب نے جو ہے وہ وہاں اسپیکولیشن میں جو ہے انویسٹمنٹس کی ہیں, اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ لینڈ بہت مہنگی ہو چکی ہوئی ہے. کسی بھی بزنس کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ لینڈ اس وقت جو ہے وہ وائبل رہے گی. وہاں اور بھی بہت چیلنجز ہیں, لوکل لیبر فورس اویلیبل نہیں ہے, تو ان سارے حالات میں اگر لینڈ بھی اتنی مہنگی ملتی ہے, کسی کو لیبر بھی اور شہروں سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے, تو دین تھنگس ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ ان گوادر.
گوادر کا جو شہر کا ڈیزائن تھا وہ کس نے بنایا؟
یہ مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے, کمپنی باہر سے ہائر کی گئی تھی, اس نے ایک انیشیل ماسٹر پلان ڈیولپ کیا, اور اس ماسٹر پلان میں اگین جو ہم نے غلطی اسلام آباد میں کی یا جو ہم نئے شہروں میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوکل پاپولیشن کو وہاں سے ریموو کیا جائے اور ان کو کسی اور جگہ ری لوکیٹ کیا جائے. وہ جو آپ کو شاید اندازہ ہوگا, ایک ایسٹ بے ہے اور ایک ویسٹ بے ہے, جہاں پر یہ وہ ایک بیلٹ ہے جس کے اوپر گوادر سٹی لوکیٹڈ ہے. تو ایسٹ بے کے اوپر پورٹ ہے, ایسٹ بے اور ویسٹ بے دونوں کے اوپر جو ہے وہ لوکل فشر مین رہتے تھے. تو ایسٹ بے پہ پورٹ کا کام سٹارٹ ہو گیا, ان کو منتقل کر دیا گیا ویسٹ بے پہ, لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ ان کو یہاں سے بھی ری لوکیٹ کر دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی تو ہم نے جو کریٹیک کی اس آئیڈیا پہ کی کہ آپ وہاں پر ان کو رکھنے کا انتظام وہیں پر ہونا چاہیے تھا, دے شوڈ ہیو بن جو ہے وہ ان کو سیٹل کرنا چاہیے سٹی سینٹر کے پلیس قریب, نہ کہ دور کرنا چاہیے. پہلے ہی وہ فشنگ سے منسلک لوگ ہیں, اور جب سے یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت سے ان کی فشنگ بھی متاثر ہوئی ہے. تو اس اربن ڈیزائن کے اندر جو سب سے بڑا آئی تھنک کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ایک اہم ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ لوکل پاپولیشن کو کیسے سیٹل کیا جائے. جب یہ سٹارٹ ہوا تو ان کو کچھ پلاٹس دیے گئے جو لوکل لوگوں کو کسی قریب ایک جگہ پہ, لیکن وہ غریب لوگ تھے, انہوں نے امیجیٹلی جو ہے وہ پلاٹ بیچ دیے. اب اگر ان کو وہاں سے شفٹ کرنا ہے تو 25-30 کلومیٹر تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ان کو شفٹ کیا جا سکے. تو ایک تو یہ چیلنج ہے, دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ان کو جہاں بھی شفٹ کرنا ہے ان کو سمندر کے پاس شفٹ کرنا ہے تاکہ ان کی فشنگ کا کام چلتا رہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ وہاں پر لوکل لوگوں نے مجھے بتائی ایک ٹریڈیشن ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سی ہے اس کو ایئر مارک کیا ہوتا ہے, جیسے گوادر کے لوگ ہیں اور جیونی کے لوگ ہیں, تو گوادر والے لوگ جو ہیں وہ جیونی والی ٹیریٹری میں جو ہے وہ مچھلی پکڑنے نہیں جا سکتے. اب جب ان کو وہ ریلوکیٹ کریں گے کسی اور طرف لے جائیں گے اور اپنے ایریا میں وہ مچھلی نہیں پکڑ پائیں گے, تو وہ دوسرے ایریا والے ان کو ٹرائبز والے جو ہے وہاں ان کے ساتھ ان کے کانفلکٹس ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہے.
جی بات بتائیے, آپ نے ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا جو پلاٹستان میں ہمیشہ یوز ہوتا ہے, سوری پاکستان میں. میں کئی دفعہ پاکستان کو پلاٹستان کہتا ہوں کیونکہ ہمارا سارا کلچر ہی پلاٹس ہے. اب یہ پلاٹستان میں گوادر کی بھی پلاٹنگ ہو گئی, کیا گوادر کی پلاٹنگ ہونی چاہیے تھی؟
نہیں ہونی چاہیے تھی.
تو سب سے بڑا غلطی یہ ہے کہ گوادر میں ہاؤسنگ کے لیے بنا ہے یا پورٹ بنا ہے؟
یہ پورٹ اور اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے بنا تھا جی, ہاؤسنگ کے لیے نہیں بنا تھا. لیکن سب سے پہلے جو وہاں پرائم لینڈ تھی جس کو ہم وہ ہیمر ہیڈ کہتے ہیں اور کوہ باطل, اس کے اوپر جو ایک کسی بھی دنیا میں کسی کنٹری کے پاس بھی وہ علاقہ ہوتا تو وہ کسی نے بھی وہ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی نے بنایا ہوتا, اور وہاں پر ایک ہاؤسنگ سب سے پہلے سٹارٹ کر دی گئی. تو وہاں پر ایک کامرس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھیں, کوئی ہیریٹیج کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھیں, کوئی کلچرل ہونی چاہیے تھیں, تو وہ ساری چیزیں اگنور کی گئیں اور بہت زیادہ وہ ہاؤسنگ کے فوکس جو ہے وہاں پلانز ہیں. آئل سٹی کے لیے ایک بنانا چاہ رہے ہیں اور چیزوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں یہ جو اسپیکولیشن ہے اس نے ایک اچھا خاصا ڈینٹ ڈالا ہوا ہے سٹی کی پراسپیرٹی میں.
اس کو تھوڑا سا ایگزامن کریں تھوڑا سا. میں جب گیا تھا میں نے یہی ان سے کہا تھا, میں نے کہا جی یہ کس نے بنایا شہر, مجھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ نیس پاک نے ڈیزائن کیا.
یہ نیس پاک ایک پارٹنر تھا اس میں, ایک انٹرنیشنل فاؤنڈری اس میں.
مجھے بتائیے کہ نیس پاک کے پاس کیا ریسورسز ہیں شہر ڈیزائن کرنے کے, اور نیس پاک کیا امرت دھارا ہے جو ہر چیز شہر ڈیزائن کرنے سے, انرجی ڈیزائن کر, ہر چیز میں لگ جاتا ہے. یہ ایک بھٹو نے نیشنلائزڈ فرم بنایا تھا, کنسلٹنگ فرم, جو ابھی تک چل رہا ہے جس کو میرا تو خیال ہے ختم کر دینا چاہیے, کیا خیال ہے آپ کا؟
جی بالکل ڈاکٹر صاحب, وہ تو اس کے اوپر ہم سیپریٹ بھی ایک ڈسکشن کر سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کمپلیکیشن جو ہے وہ نسپا کے بس میں تھی ماسٹر پلاننگ میں, یا ان کا ایکسپیرینس ہو نئے شہر ڈیزائن کرنے کا بسانے کا, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دے ور کیپیبل انف ٹو ڈو اٹ.
بالکل, پر انہوں نے کیا نا, اب مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے, مجھے تو یہ کہا گیا کہ انہوں نے کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل فرم جس کا نام بھی نہیں پتا, تو میں کیا کروں بھائی, نام تو بتانا چاہیے نا کون سا فرم کیا ہے. اب ڈاکسیارڈس نے اسلام آباد کیا, حالانکہ ڈاکسیارڈس نے بھی گند مارا, مجھے تو, میں تو بہت اس سے اختلاف کرتا ہوں, شاید بہت بڈھا ہو گیا تھا, سینائل ہو گیا تھا یا کیا, اس نے اسلام آباد میں تو گند مارا. چلیں خیر وہ چھوڑے. اب یہ کہ اگر نسپا نے یہ شہر ڈیزائن کیا یا انٹرنیشنل کنسلٹنٹ بھی جو آیا, انٹرنیشنل کنسلٹنٹ بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, انٹرنیشنل کنسلٹنٹ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ لوگوں نے گراج میں بنا لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ ہمارے ملک میں تو آپ کو یاد ہے دو تین سال پہلے ایک کمپنی تھی جو نائجیریا میں, سوری کینیا میں بنی, اس کا نام تھا کارگل. اس نے آ کے ہمارا وہ جو ہیونی انجینئرنگ کمپلیکس یا کیا وہ خریدنے کی کوشش کی, حالانکہ اس وہ کمپنی ایگزسٹ بھی نہیں کرتی. تو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ تو بڑے ہوتے ہیں, پر نسپا کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہے یہ کام کرنے کے لیے, انہوں نے کیا کیوں؟ نمبر ایک,
یہ ڈاکٹر صاحب ابھی جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بتا دوں, جو اپڈیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ابھی ایک چائنیز فرم ہے جو اس کو ماسٹر پلان کو جو ہے وہ ری ڈیزائن کر رہی ہے, تو یہ کوئی 7-8 ماہ سے ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ نیا اوارڈ ہوا تھا, اور یہ اس وقت سے جو ہے وہ ایک چائنیز فرم ہے, اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہوا ہے, اور مجھے اس کا نام جو ہے وہ مل گیا جو میرے پاس تھا, جو پہلا ماسٹر پلان تھا, یہ آرتھر دی لٹل ایک ٹیم ہے جو کنسورشیم تھا برٹش اور امریکن آرکیٹیکٹس کا, تو انہوں نے یہ پہلا ماسٹر پلان ڈیولپ کیا.
سوری یہ آپ کو کسی نے غلط دے دیا انفارمیشن, آرتھر دی لٹل از اے کنسلٹنگ اینڈ این اکاؤنٹنٹس فرم, وہ یہ کام نہیں کرتی, انہوں نے فیزیبلٹی بنائی تھی. مجھے بھی کہا گیا تھا کہ مسٹر آرتھر ڈی لٹل نے کام کیا, میں نے کہا جی مسٹر آرتھر ڈی لٹل کی کہاں رپورٹ ہے, میں اس وقت ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھا, وہ مجھے رپورٹ نہیں دے سکے آج تک, ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی فیزیبلٹی بنائی, بہت سے بہت وہ ٹاؤن پلاننگ نہیں کر سکتے بیکاز ان کے پاس اسکل ہی نہیں ہے, آپ آرتھر ڈی لٹل کو فون کر کے بھی پوچھ لیں, وہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. وہ دے آر
لیکن یہ کروائی ہوگی
نہیں, وہ کر نہیں سکتے نا, دیکھیں نا, دے آر ان انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ فرم بیسکلی, وہ ساتھ کنسلٹنگ تھوڑی بہت کرتے ہیں. ٹاؤن پلاننگ اگر کریں گے تو پھر تو ہمارا بڑا اچھا کیس بنتا ہے, ان کے اوپر ہم کیس کر دیں, ہم ان سے بڑے پیسے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے فراڈ کیا. اچھا اب اگر نسپاک نہیں کیا تو نسپاک کو پوچھنا چاہیے, بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ جب انہوں نے مجھے نقشے دکھائے, پتہ نہیں آپ نے نقشے دیکھیں گے, دیکھے میں نے گھر ہی گھر دیکھے تھے اس پہ, پلاٹنگ پلاٹنگ ہر جگہ پلاٹنگ, سیکٹر یہ سیکٹر وہ پلاٹنگ ہوئی ہوئی. تو میں نے سوال پوچھا, تو آپ بھی مجھے جواب دے دیں اس سوال کا, میں نے پوچھا, میں نے کہا اچھا بتائیں انڈسٹری کہاں لگے گی؟ انہوں نے کہا وہ پیچھے کر کے. میں نے کہا یار انڈسٹری نارملی پورٹ کے ساتھ لگتی ہوتی ہے, کیونکہ پھر وہاں سے تو چیزیں نکالنی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا پھر میں نے کہا ویئر ہاؤسز کہاں ہوں گے؟ ویئر ہاؤسنگ کی جگہ ہی کوئی نہیں. پھر میں نے پوچھا یار ہوٹل اور وغیرہ چیزیں کہاں ہوں گی؟ وہ تو ہیں کوئی نہیں. اب ہوٹلز کی جگہ گوادر میں کوئی ہے؟
جی ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جو ہے نا ایک ایریا ہے, تھوڑا ایریا ہے, اتنا کافی نہیں ہے, جو جو لینڈ جو ہے وہ چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کو دی ہے, جس کو فری پورٹ زون کہہ رہے ہیں, وہ ویئر ہاؤسنگ اور ایسی جو ہے وہ انڈسٹریز کے لیے, لاجسٹکس کے لیے, وہ پورٹ بالکل ساتھ ہی ہے. یہ کوئی تقریباً 2200 acres کی لینڈ ہے جو لیز پہ جو ہے وہ چائنا کو دی گئی ہے, 2200 acres
وہ نیوی کے پاس تھی, اب وہ نیوی نے ان کو دے دی ہوگی,
جی,
پر اوریجنل ماسٹر پلان میں وہ نہیں تھی.
جی وہ فری پورٹ زون جو ہے وہ دے دی ہے, تو وہ تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ لاجسٹکس اور ویئر ہاؤسنگ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ تو ادھر قریب ہی جو ہے بن رہی ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں جو دنیا میں جو ایسے ایسے شہر ہوتے ہیں ان میں پہلے پورٹ آتا ہے, پورٹ کے پیچھے ساتھ ہی ویئر ہاؤسز آتے ہیں, ویئر ہاؤسز کے ساتھ ہی ہوٹلز آتے ہیں, انٹرٹینمنٹ ایریاز آتے ہیں, اس کے ساتھ ہی انڈسٹری آتی ہے, تو یعنی کہ پورا شہر ہی ایک بن جاتا ہے ایک قسم کے. اس کے سائڈ پہ جون سے ہیں پورٹ کی دوسری سائڈ پہ وہاں ہوٹل شوٹلز یہ وہ بورڈ واک جہاں لوگ پھر سکیں وہ چیزیں آتی ہیں, پورٹ سارا ایک کمرشل اڈا ہوتا ہے, ہاؤسنگ تو اس کے اندر تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا, ہاؤسنگ بہت بڑا پیچھے کی بات ہے. ہم ہر چیز کو تباہ کرتے ہیں پلاٹنگ کر کے. میرا تو خیال ہے گوادر کا سب سے بڑا نقصان ہے یہ کہ پلاٹنگ کرتی ہے اور ایک اسپیکولیٹو ڈیمن بنا دیا. اب اگر چائنا اس کو ری ڈیزائن بھی کرے گا تو اسپیکولیٹو پرائس دے کے ری ڈیزائن کرنا پڑے گا ہمیں, وہ اس کے بغیر نہیں. لوگ تو اپنا وہ پاؤنڈ آف فلیش نکالیں گے, ہمارے سے خون نکالیں گے کہ بھائی آپ نے ہمیں دیا تھا, اب آپ ہم سے پیسے بھریں پہلے, پھر آپ اس کو ریزون کر سکتے ہیں. ठीक है ना, तो मतलब ये कि एक तमाशा
बने, एक हैवी प्राइस उसकी जो है वो आपको, आपको अगर इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी अब उसकी, तो अब आप स्टेट जो है वो किस प्राइस के ऊपर वो सारी जमीन जो है वो अवेलेबल करे बिजनेसेस के लिए। और दो ऐसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो सबसे पहले बना दी गई, एक सिंगार है और एक न्यू टाउन है, तो वो जो आप कह रहे हैं वो दोनों बिल्कुल पोर्ट के साथ हैं।
अब मेरे भाई के दोनों, अब मेरे भाई ये सब कुछ जाके वो हैमरेड की जो बात करें बिल्कुल ठीक है, मैंने भी वहाँ खड़े होकर जब चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैंने पीसी के सामने बिल्कुल है वो, तो मैं वहाँ खड़े होकर मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा ये फलाने का प्लॉट है फलाने का, मैंने कहा क्या। अब वो चीफ मिनिस्टर साहब, लोग उनको बड़ी गालियाँ देते हैं लहरी साहब, बट मैं कहता हूँ वो फिर भी बड़े अकलमंद आदमी थे, क्योंकि उनकी उनकी शक्ल गिर गई, उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, ठीक है। वो बेचारा बिल्कुल ठीक होता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, और इन्होंने कर दिया ये काम। अच्छा, इसमें आप कौन निष्पक्ष से सवाल पूछेगा, आप रिसर्चर, आप निष्पक्ष से पूछें तो सही, सवाल तो पूछें, और नेस्पा के बारे में आर्टिकल तो लेंगे कि भाई
नेस्पा का भी इसमें रोल होगा,
नेस्पा का रोल,
लेकिन ओवरऑल हमारी जो स्टेट वीकनेस है वो तो हम इस्लामाबाद में भी वही कर रहे हैं, वो हम लाहौर में भी वही करते हैं, ये जो प्लॉटिंग वाले काम है। तो उसमें मैं अगेन उसी बात पे आऊंगा कि ये गवर्नेंस फेलियर है, कि कोई ऐसी वहां स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं थी जो इसको शुरू से ही अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान करती, डिजाइन करती,
तो वो फेलियर है, वो तो हमारे सारे शहरों में है। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि उसके साथ साथ अगर नेस्पाक जैसी एजेंसी है, जो नेस्पाक हर जगह घुस जाती है, हर जगह उसका काम गंदा होता है, उसको कभी आज तक किसी ने रिव्यू नहीं किया, खुदारा नेस्पाक का एक दफ़ा रिव्यू तो कर लें कि वो करती क्या है, हर जगह से पैसे उन्होंने कितने लिए, ग्वादर से पैसे कितने लिए, हुकूमत से पैसे तो लिए ना उन्होंने, नेस्पाक का माशाल्लाह बढ़ती जा रही है, मुँह मांगे पैसे लेते हैं और काम उनका गंदा होता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, भाई आपने सिटी प्लानिंग कभी नहीं की तो आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है आपने सिर्फ प्लॉटिंग करके छोड़ दिया, आपको पोर्ट का कुछ नहीं पता था, तो आप हमारे, हमने आपने कौम का इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, आपकी अपनी बैलेंस शीट से ज़्यादा नुकसान करवा दिया, तो इसके बारे में कौन पूछेगा मेरे भाई।
बिल्कुल, मैंने बहुत ज्यादा इस पे कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेट उस रोल को नहीं किया जो नेस्पाक का इसमें, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। आप जैसे कह रहे हैं आपने उसको देखा है कि उनका क्या रोल था, तो मे बी आई थिंक स्टेज पे आया उसे इन्वेस्टिगेट।
आपने अभी कंफर्म कर दिया, आपने मुझे कहा कि भाई कोई और इंटरनेशनल फर्म, तो मैं हिल गया, मैंने कहा शायद मेरी तहकीक गलत थी, जब आपने आर्थर डी लिटिल कहा तो मैं फिर मुझे समझ आ गई, क्योंकि आर्थर डी लिटिल का मैं भी सुन चुका था। आर्थर डी लिटिल ने फिजिबिलिटी बनाई थी, यस इट्स अ कंसल्टिंग फर्म, फिजिबिलिटी बना सकते हैं, जैसे आप और मैं जाके फिजिबिलिटी बना सकते हैं, हम इकोनॉमिस्ट हैं,
बिल्कुल ठीक है,
पर अगर आप जाके पोर्ट डिजाइन करें तो मैं तो आपको गाली दूंगा ना, मैं तो कहूंगा भाई ये आपने क्या झूठ बोला, आप तो पोर्ट नहीं डिजाइन कर सके, आप, मैं पोर्ट डिजाइन करूँ आप मुझे गालियां देंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, चलाकी कर रहे हैं, क्या से आप पोर्ट कहाँ से बन गए, ठीक है ना डिजाइनर। तो ये सिर्फ बात जो मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। अच्छा चले, अब ये इसको समराइज करें, आप कह रहे हैं कि एक तो हमने गन डाल दिया कि जी हमने वो बना दिया, मैं क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, हमने वही एडमिनिस्ट्रेशन रखी जो पूरी दुनिया में है, ठीक है, जो पूरे पाकिस्तान में, सॉरी पूरे पाकिस्तान में,
बिल्कुल जी,
जो जिसका मतलब ये है कि फ्रेगमेंटेड टूटी हुई एडमिनिस्ट्रेशन, 10-15 इदारे, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसी को कोई पता नहीं कि कहाँ जाए क्या करे, सिर्फ हुक्मरानी के लिए लोग आते हैं, ट्रांसफ़र करके फिर चले जाते हैं, ना किसी की ओनरशिप है ना कुछ है। दूसरी चीज़ आप कहते हैं कि शहर जौन सा है वो नेस्पाक ने गंद मारा है, प्लॉटिंग का कर दी है, एक हमने वो उसका स्पेकुलेटिव फरवर शुरू कर दिया, अब उसको रीडिज़ाइन में हमें बहुत पैसे देने पड़ेंगे और मुसीबत पड़ेगी और बड़े टाइम लगेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये SEZ वगैरह का इंतजाम में हमने जब वहाँ डाल दिया तो हमने और कन्फ्यूजन कॉज कर दी। अब आ जाए जो आपने थोड़ी सी बात की थी उसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बलोचियों के ऊपर आपने बलोचियों की बात की थी, ठीक है, बेचारे बलोची का कोई, उनको हम बाहर शहर से निकालना चाहते हैं, जो मुझे समझ नहीं आती क्यों भाई, उनको रहने दो वहाँ, वो अपना अगर कोई पैसा बनाना है बना लें, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी बना लें, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे भाई है ना यार, तो उनको हम शहर से निकाल लें। ये बताइए बलोचिस्तान का क्या हिस्सा है ग्वादर में?
इसमें एक तो जो आप लोकल लोगों की बात कर रहे हैं, हमने भी अपनी स्टडी में ये रिकमेंड किया है कि इसको एक आप एक वहीं पर करें और एक ओल्डर उनका जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करें, और अगर आपने उसको टूरिज्म अट्रैक्शन बनाना है, जो कि हमारा इरादा है ग्वादर को बनाने का,
तो वो इसी तरह बनेगा। अगर हम सब उखाड़ के उसको फेंक देंगे, उसकी हिस्ट्री सारी जो है वहाँ मौजूद नहीं रहेगी, देर विल बी नो कल्चरल अट्रैक्शन इन दैट सिटी। तो हमारी एक तो अहम जो है वो रिकमेंडेशन ये है उसमें। सेकंड ये है कि वहाँ लोकल लोगों के लिए जो है वो अभी तो सीपैक के बाद ये कुछ डेवलपमेंट के बाद उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज तो मिली हैं, हॉस्पिटैलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है उनके लिए जो है वो, कुछ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हुई हैं, लेकिन आगे चल के स्टिल वो हिस्टोरिकली बड़ी आइसोलेशन में रहे हुए हैं ग्वादर के लोग हैं। जैसे वहाँ हॉस्पिटल नहीं था कोई भी, तो लोग वहां से ट्रेवल करके कराची जाते थे, और जो 650 किलोमीटर का फासला है दे यूज टू ट्रेवल इट इन लाइक 3 days और 4 days। तो अब वो मैक्रान कोस्टल हाईवे से एटलीस्ट वो 6-7 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये मैं जस्ट आपको एक बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि ये वहाँ लोकल लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज जो है, हॉस्पिटल एक वहाँ पर ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया हुआ था, जिस हॉस्पिटल में जो है वो कोई डॉक्टर नहीं वहाँ पर आना चाहता, इतनी दूर वो जगह है, कोई लोकल सिविलियन डॉक्टर नहीं जाना चाहता, तो मिलिट्री जो है वो उसने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभाल ली उस हॉस्पिटल की, और मिलिट्री ने अपने डॉक्टर्स वहाँ अपॉइंट किए हैं। तो पहली दफ़ा ग्वादर की को 200-300 साल हिस्ट्री में वहाँ वो उनको जो है वो लोकल डॉक्टर्स मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन में फोकस आने से कुछ ना कुछ तो चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ग्वादर में जो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है उसका जो शेयर है ग्रॉस रेवेन्यूज का, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने लेना है उससे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पोर्ट जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है, तो उसमें एज सच कोई डायरेक्ट वो शेयर नहीं है, लेकिन वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का शेयर है। हमने अपनी स्टडी में भी यही मेंशन किया है कि दुनिया भर में तो शहर जो ऐसे होते हैं चूंकि वो पोर्ट्स के रेवेन्यू से उनको जो है वो शेयर मिलता है, तो यहाँ इसके केस में उनको नहीं मिला हुआ। तो अगर इस शहर को डेवलप करना है तो उसकी रेवेन्यू सस्टेनेबिलिटी कैसी होगी, दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू एड्रेस एक्चुअली। तो जब तक हम उस शहर के रेवेन्यू सस्टेनेबिलिटी इंश्योर नहीं करेंगे, वहाँ लोगों के लिए एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हम नहीं दे पाएंगे। क्वेटा और इस्लामाबाद से बैठ के अगर डिसीजन होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, तो वो हमेशा डिले होंगे, टाइमली प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाएंगे। तो जब तक आपने सिटी के लिए,
आप सोच रहे हैं ग्वादर को एज ए नॉर्मल शहर, मैं उस तरह सोच ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ चले छोड़ें उसको जो मर्जी वो करे। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वगैरह वो सब कुछ लोगों का हो जाएगा, पर अब अगर वहाँ से लोग निकाल दिए हैं तो अगर पानी पहुँचाना है, अगर वहाँ स्कूल बनाने हैं, सब कुछ, तो वो तो लोकल पॉपुलेशन के नहीं, वो तो हम कर रहे हैं जो बाहर से पॉपुलेशन आएगी, जो पंजाब से आएगी उसके लिए कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट तो उसके लिए कर रहे हैं, हम लोकल के लिए तो कर ही नहीं रहे। अब जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि जब डेवलपमेंट होगी तो क्या हमने उस डेवलपमेंट में से, हमने तो प्रॉफिट बनाना है ना, ग्वादर पोर्ट देखा जाए तो इट शुड बी अ कॉरपोरेशन दैट इज सपोज टू गिव द पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पीपल अ प्रॉफिट, ठीक है ना जी। तो अगर प्रॉफिट आएगा तो क्या बलोचिस्तान में उसका हिस्सा है,
उसके अंदर तो नहीं है जी, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में नहीं है।
अच्छा,
वो जो है वो फेडरल सब्जेक्ट होने की वजह से पोर्ट्स, जैसे कराची पोर्ट अथॉरिटी है, जैसे पोर्ट कासम है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट की जो है। अच्छा, वो
ग्वादर का पोर्ट, ग्वादर बलोचिस्तान का ग्वादर के पोर्ट में हिस्सा नहीं, बलोचिस्तान की ग्वादर की जायदाद में हिस्सा नहीं, ठीक है, तो बलोचिस्तान का हिस्सा कहाँ है ग्वादर में?
मेरा ख्याल सिटी तो देखें, वो जो सिटी है उसके अंदर जो सिटी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर होनी है, यही हमारी उस स्टडी में हम भी फोकस जो वो कर रहे हैं, वो तो सारा कुछ जो है वो बलोचिस्तान गवर्नमेंट के ही उस पर व्यू में आता है। तो फेडरल गवर्नमेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग रोल, लेकिन जो उनके पास अपॉर्चुनिटी है वो सारी उसी तरीके से होनी है। अगर आप सिटी की गवर्नेंस को अच्छे तरीके से डिजाइन करें तो वो इन अपॉर्चुनिटीज को रीप कर सके, तो दैट इज अ चैलेंज एक्चुअली।
नहीं, पर वो ग्वादर, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बलोच बंदा हमसे पूछे कि भाई मुझे ग्वादर से क्या फायदा होगा, तो हम जवाब क्या देंगे?
ये अक्सर इसमें फायदा तो इतना है कि देखें, जब ट्रेड रूट अगर बनना है, अगर पोर्ट ऑपरेशनल होती है, तो वो ट्रेड कनेक्टिविटी भी जो है वो रूट बलोचिस्तान से जो है वो गुजरना है, उसके बाद वहां पर लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन चैलेंज ये है कि अगर हम लोकल पॉपुलेशन को एजुकेशन और बेहतर ट्रेनिंग दे सकें और वो लोग उससे हिस्सा ला सकें, तो ये सारा कुछ उस पर।
मेरा ख्याल है ये जरा थोड़ा सा आप क्वेश्चन को डॉज करें। देखिए, अगर आप एक पॉपुलेशन, किसी की पॉपुलेशन, अगर लाहौर से आप कुछ कर रहे हैं, तो मैं एज ए लाहौरी हिस्सा मांगूंगा, भाई मुझे कुछ दें, क्यों आप मेरी ज़मीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बलोचिस्तान को हमें क्या कुछ नहीं देना चाहिए था? क्या हमें बलोचिस्तान को पोर्ट में हिस्सा 20% दे देते, 15% दे देते, ठीक है ना, क्यों हमने नहीं दिया? हमने ओरिजिनल, आपको याद है कि जब ये दिया था मुशरफ के ज़माने में, तो हमने 30% NLC को दिया था, 30% अकील डैडी को दिया था और 30% आर एफ अबीब को दिया था। क्या उस वक्त हम बलोचिस्तान गवर्नमेंट को 15% नहीं दे सकते, 10%?
वो जो पोर्ट का जो डिविडेंड है पोर्ट की प्रोस्पेरिटी से बलूचिस्तान कैसे गेन करेगा,
पॉलिटिकल इशू नहीं है, क्योंकि फिर हम इकोनॉमिस्ट बाद में फिर हम बात करते हैं बैलेंस डेवलपमेंट की, रीजनल इनइक्वालिटी की। ठीक है, जब आप एक 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 रीजन का हिस्सा ले लें फिर आप बाद में रोएं। अब किताबें लिखी जाती हैं रीजनल इनइक्वालिटी, अभी आपको पता है हफीज पाशा साहब ने किताब लिखी है, ठीक है, तो अगर आप उसको बाद में आप लिखें रोएं कि वो रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ गई, वो फिर मुशरफ जैदी साहब बनाते हैं वो एजुकेशन इनइक्वालिटी, तो भाई अगर आप उनसे रिसोर्सेज सारे छीन लेंगे तो फिर ऑब्वियसली तो एजुकेशन इनइक्वालिटी रहनी है ना। तो अगर बैलेंस डेवलपमेंट हमारा एक गोल है तो फिर वी मस्ट थिंक अबाउट दीज इशूज़ टू, कि हम रिसोर्सेज कैसे शेयर करेंगे और किस तरह करेंगे काम। ठीक है ना,
जी बिल्कुल करना चाहिए,
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे सोचना चाहिए। कि बलोचिस्तान गवर्नमेंट को हमने कुछ भी नहीं दिया, विच इज़ काइंड ऑफ सैड, क्योंकि फिर उससे वो कौमी यकजहती नहीं बनती और बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होती।
बिल्कुल जी,
ठीक है ना।
ये डॉक्टर साहब जैसे इकोनॉमिक, असल में मैं अगेन उसी पॉइंट पे आऊंगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, अगर इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो, अगर सिटी को हम प्रॉपरली डिजाइन करें, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली बलोचिस्तान वुड गेट अ शेयर इन दोज अपॉर्चुनिटीज। वो लैंड जो है वो सारी की सारी अगर SEZ भी बनता है, सपोज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो जो अंडर द लॉ है वो SEZ ऑब्वियसली वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से उसकी अप्रूवल होनी है, लेकिन इट विल कम थ्रू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको जो है वो डेवलप करवाना होगा।
देखिए ना, जो वो करवाएंगे, जो डेवलप करेंगे, वो तो जिन्होंने प्लॉट ले लिया है और जो पंजाब और कराची से लोग आए हैं वो डेवलप करेंगे, ठीक है ना, और वो उसमें से अर्निंग्स खाएंगे, क्योंकि या तो आप कुछ हिस्सा बलोचिस्तान के रिजर्व कर लेते हैं कि उनके लोग कर लेते हैं डेवलप, ठीक है। नंबर दो ये है कि जैसे UAE में, सऊदी में उन्होंने रखा हुआ, वो तो कहते हैं लोकल्स का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना,
जी बिल्कुल होना
अच्छा,
चाहिए।
अच्छा, अगर वो नहीं आपने किया तो अब बलोचिस्तान को क्या मिलेगा? बलोचिस्तान को यही मिलेगा ना कि अगर लेट से जो सर्विसेज हैं वहाँ जनरेट होती हैं उससे थोड़ा सा टैक्स मिलेगा, ठीक है, कॉमन डिविजिबल पूल में थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है, बट कॉमन डिविजिबल पूल में या तो हम फिर ग्वादर का हिस्सा रखें, कहेंगे बलोचिस्तान को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, ठीक है।
बिल्कुल जी,
ये रीजनल इश्यूज जो उनसे इन पे भी हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि बाद में किताबें लिखने का रीजनल इनइक्वालिटी पे कोई फायदा नहीं अगर हम इकोनॉमिस्ट प्रोएक्टिव होके पहले नहीं बात करते, बाद में तो मेजरमेंट करने का
मजा आता है। पॉइंट रेस किया कि अगर ये लोकल पॉपुलेशन को अगर इसमें डिविडेंड नहीं मिलता, अगर प्रॉस्पेरिटी में शेयर नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली हमने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया कि दुनिया भर की स्टडीज में यही बताया गया कि पोर्ट की सक्सेस के लिए जो है वो, इवन पोर्ट की सक्सेस के लिए आपको लोकल पॉपुलेशन की जो है वो अटैचमेंट उस पोर्ट से बहुत जरूरी है, कि वो लोकल लोग उसको ओन करें, उसके साथ अपने उनके वाबस्ता हों, इंटरेस्ट उनके, और वो उसको समझें कि ये पोर्ट हमारे लिए एक बेहतरी का सबब है। तो उससे अगर अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोकल लोगों को मिलेंगी तो ऑब्वियसली इससे एक टू वे रिलेशनशिप होगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ठीक है जी। तो फिर यानी कि हमने एक मैस मचा दिया है, नवीद साहब टू समराइज, कि हमने एक मैस मचा दिया है ग्वादर में, हमने वही गवर्नेंस सिस्टम रखा है जो हम पूरे मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम चेंज ही नहीं कर सक रहे, वही लॉर्ड मकॉले जो छोड़ गया था उसी तरीके से हम उसको रन कर रहे हैं, सिर्फ उसके ऊपर हम चीज़ें और लगाई जाती हैं, लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, लाइक LDA, GDA, पर सिस्टम वही चलता रहता है, एक मैस मचा देते हैं। दूसरा, हमें प्लॉट से जो प्लॉटिस्तान में प्लॉट का शौक है, प्लॉट्स हमने ज़रूर बनाने हैं, तो हमने एक जहाँ प्लॉट नहीं बनने चाहिए थे वहाँ भी प्लॉट बना दिए, एक स्पेकुलेटिव फरवर शुरू कर दिया है। तो अब ग्वादर की फ्यूचर आगे तो मुझे लग रहा है कि इतनी कोई खास अच्छी नहीं, अनलेस कोई ये नया पाकिस्तान में इमरान साहब को बड़ा सीरियस किस्म का लेजिस्लेटिव चेंज करे, कोई बहुत सीरियस लेजिस्लेटिव चेंज करना पड़ेगा इसको चलाने के लिए, जिसका मतलब है तकरीबन पाकिस्तान का पूरा गवर्नेंस निज़ाम ही चेंज करना पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका?
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसके ऊपर बड़ी थिंकिंग रिक्वायर्ड है। मैं समझता हूँ कि इतना पेसिमिस्टिक मैं नहीं हूँ वैसे ग्वादर के फ्यूचर के बारे में, लेकिन मैं, मेरा कहने का मकसद इस सारी रिसर्च में ये है कि स्टिल वी हैव टाइम, कि हमने जो गलतियाँ की हुई हैं हम उनको दुरुस्त कर सकते हैं, और दिस ऑफर्स अपॉर्चुनिटी जो है, अगर पोर्ट चलती है, पोर्ट के ऑपरेशन चलते हैं, वहाँ पर अगर हम जो हमारे लॉज और रेगुलेशन बाकी शहरों में अच्छे नहीं है बिजनेसेस के लिए, तो वहाँ पर वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि भटोरी जो है वो लिया जाता है, तो अगर हम भी ग्वादर को ऐसे लें तो देर इज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे लीगल सिस्टम है, आपको पता है कि दुबई के अंदर जो DIFC है उसके अंदर जो लीगल सिस्टम है वो ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम नहीं है, वो कॉमन लॉ के तहत ऑपरेट होती हैं, वहाँ की कोर्ट्स जो हैं इंग्लिश में प्रोसीडिंग्स होती हैं, और उन्होंने अपना जो है आर्बिट्रेशन जो है वो लंदन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को आउटसोर्स की हुई है। तो क्या अगर हम ऐसे जो है वो अगर ऐसे डेवलपमेंट ऐसे इकदाम वहाँ करें ग्वादर में तो हम भी जो है वो उन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से गेन कर सकते हैं।
चलिए ठीक है नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच, आई थिंक इट्स वेरी गुड वर्क, माशाल्लाह कीप इट अप, करते रहें अच्छा काम। हमें चाहिए कि हमारी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी लोग ऐसे काम करें, ये अपने लोकल इश्यूज़ उठाएं, ज़रूरी नहीं कि बाहर बाहर भाग भाग के करें। ये लोकल इश्यूज़ ग्वादर बहुत बड़ा इशू है, मेरे ख्याल इस पर अभी और भी पेपर्स हो सकते हैं, और भी काम हो सकता है, बहुत अच्छा है। इसको CPAC के साथ रिलेट करें, इसको टाउन प्लानिंग के साथ रिलेट करें, इसको NESPAC के साथ रिलेट करें, बड़े इशूज़ हैं देखने वाले, और आई एम वेरी ग्लैड यू डन दिस एक्सलेंट जॉब। तो थैंक यू नवीद साहब, इंशाल्लाह फिर भी आपको मैंने छोड़ना नहीं, इंशाल्लाह फिर आपको पकड़ना किसी और चीज़ पे, ठीक है जी?
जी बिल्कुल जी, आई एंजॉय जी, थैंक यू,
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज।
सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।